रजोभिषेकम करने मात्र से क्या होगा, व्यक्ति की हो सकता है पूर्ण रूप से मति भगवान में लग जाए। ये सारा डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे थे इतने लंबे से, क्योंकि जब हम कभी ऐसे चीज़ों को देखते हैं, प्रेम विह वाला, और ऐसे शब्दों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक भाव होता है कि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही उन्नत कोटि के स्तर पर हो सकती है, या बहुत ही मुक्त जीवात्माओं के साथ हो सकती है, लेकिन जो साधना भक्ति से जूझ रहे हैं उनके लिए शायद ये चीज़ मेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, 11वें स्कंद के एक श्लोक में, तीसरे अध्याय के, इस बात को कहते हैं राजनीमी को, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यश। जब भक्तों के बीच में ना परस्पर आपस में भगवत कथा, भगवान की कथा जब होती है, तो उस कथा का स्वभाव क्या है, पावनम, बहुत शुद्ध करने वाली है, बहुत प्यूरिफाई करने वाली है, भगवत यशा। क्यों भी प्यूरिफाई करने वाली है, कि भगवान के यश से भरी है, भगवान की कीर्ति से भरी है। मिथो रत्तिर मिथो तुष्टि, हाँ, आपस में बहुत प्रेम विकसित करती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि भक्तों के बीच में प्रेम कैसे विकसित किया जाए, प्रेम कैसे हमारे अंदर बढ़ सकता है, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और क्या क्या नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या है, मिथो रतिर, आपस में रति बढ़ती है कम, जबकि भगवान की कथा का आपस में परस्परानुकथनम, चर्चा भगवान की कथाओं को लेकर होता है, परस्परानुकथनम मिथो रतिर मिथो तुष्टि, और बहुत पूर्ण रूप से वो तुष्टि प्रदान करती है, सेटिस्फैक्शन हृदय को, जिसकी अभिलाषा जन्म जन्म में व्यक्ति कर रहा है। इवन देखते हैं श्रीमद् भागवतम कृष्ण बुक के जब शुरुआती अध्याय पेजेस में, प्रीफेस में ये बात मेंशन करते हैं जॉर्ज हैरिसन, जब उन्होंने प्रीफेस लिखा है, तो बड़ा अच्छा लाइन कहते हैं, वो कहते हैं, ऑल यू नीड इन लाइफ इज लव, और लव को डिफाइन भी किया है ब्रैकेट में डाल के, कृष्णा, हाँ, कहने का मतलब जब तक कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है, तब तक वो जो सेटिस्फैक्शन प्रेम जो संसार में हम ढूंढ रहे हैं वो असंभव है प्राप्त करना, और भक्तों के संग में वो मिल सकता है बड़े आराम से। कैसे, परस्परानुकथनम, परस्पर बोथ वेज अनुकथनम, हाँ, पावनम भगवत यश, ये भगवान के जो कथा है, कथा अमृत है, वह पावन है, वो पावन करने वाली है। मिथो रतिर मिथो तुष्टि, पूर्ण रूप से वो हमें रति और तुष्टि प्रदान करने वाली है। निवृत्त मिथ आत्मना, ये हमें निवृत्त भी करेगी साथो साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब चल रहा है आपस में मिथो रति मिथो तुष्टि, लेकिन संसार से पार करने का कुछ सोल्यूशन ही निकल रहा, नो प्लान टू गो होम बैक टू गॉड, नहीं, वो भी उसी में इंक्लूडेड, निवृत्तिर, हाँ, उसमें निवृत्ति प्राप्त होती है। और श्रीमद् भागवतम और इवन चतन चरितामृत, इन सारी पुस्तकों को अगर देखें तो देखेंगे इस चीज़ को हम, कि किस प्रकार से ये प्रेममय संबंध को भक्तों ने आपस में प्रस्तुत किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने दक्षिण भारत की यात्रा में जब गोदावरी के तट पे पहुँचे, तो वहाँ पर उनका मुलाकात हुआ एक बहुत ही महान महाभागवत भक्त श्रील रामानंद राय से, और वो पूरा का पूरा जो हमें सेक्शन है चैतन्य चरितामृत के मदरलीला के 8वें अध्याय मिलता है, तो उसमें बहुत ही डीप कन्वर्सेशंस हैं चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानंद राय के बीच में, और रोज उनके बीच में ऐसी चर्चाएं, बहुत ही दिव्य चर्चाएं, बहुत ही मतलब एक तरह प्रकार से एसोटेरिक टॉपिक्स, इतनी ऊंची ऊंची बातें उसमें मैंशन की गई हैं। तो उसी वार्ता में, एक वार्ता में जब आता है, जो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं और श्री रामानंद राय इस चीज़ का डिफाइन करते हैं, अलग अलग प्रश्नों को उत्तर देते हैं, तो वैसे ही एक दिन के प्रश्न उत्तरों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे और शॉर्ट आंसर्स दिए उसमें। सबसे धनी व्यक्ति कौन है इस संसार में, रामानंद राय आपको क्या लगता है सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो रामानंद बताते हैं कि जिसके पास कृष्ण का प्रेम है सबसे धनी व्यक्ति है संसार में। फिर पूछते हैं सबसे बेस्ट एजुकेशन, सबसे बढ़िया शिक्षा या सबसे बढ़िया ज्ञान क्या है संसार में, तो राधा कृष्ण के प्रति जो ज्ञान है वो सबसे उन्नत कोटि का ज्ञान है। फिर बताते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट फेम, सबसे ऊंचा जो यश है वो क्या है, सबसे बड़ा यश क्या है, कि वो एक व्यक्ति भक्त जाना जाता है भगवान का, वो सबसे बड़ा यश है उसके लिए संसार में। और फिर उसी में पूछते हैं कि एक सबसे बड़ा दुख क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रेस, सबसे बड़ा दुख क्या है किसी के लिए, तो वो सबसे बड़ा दुख है भगवान के भक्तों से अलग हो जाना, भगवान के भक्तों से विरह को सहना, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रेस बताया गया है शास्त्रों में। और इसी चीज़ की जो व्याख्या है, और इसका जो पूरा का पूरा एक तरीके से कहें मैनिफेस्टेशन या एक लीला के माध्यम से महाप्रभु इसको प्रकट करते हैं, और ये बताते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिलन है नित्यानंद प्रभु से होता है वो अपने आप में इस सेम भावनाओं को प्रजेंट करता है, प्रेम वी वला, जो श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं किस प्रकार से प्रेम की सर्वोच्च परिकाष्ठा जो होती है वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की है। कैसे प्रकट की है? भक्त होने के मानते, भक्तों की भक्ति के माध्यम से भक्त होकर के, हाँ, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, दोनों नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप और जो चैतन्य महाप्रभु भक्त का एक अवतार, भक्त का रूप लेकर के संसार में प्रकट हुए और इस चीज को प्रकट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जब भक्त आपस में मिले तो उसकी जो चरम परिकाष्ठा जो हो सकती है वो हो सकती है जब चैतन्य महाप्रभु और खासकर नित्यानंद प्रभु के मिलन के विषय में पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो आज उसी से थोड़ा सा सुनने की कोशिश करेंगे। तो इसमें चैतन्य भागवत में इसके मध्य खंड के पहले भाग में इस प्रकार से काफी विस्तार से वर्णन आता है कि कैसे जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिले तो किस प्रकार से आनंद के सागर में सारा का सारा नदियां डूब चुका था। तो वर्णन इस प्रकार से आता है, चैतन्य महाप्रभु जो गया से दीक्षा प्राप्त करके नदी वापस आए, कृष्ण प्रेम से पूरा आप्लावित थे और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु इतने बदल गए। निमाई पंडित जो लॉजिशियन थे, तर्कवादी थे, और वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बदलाव कैसे इनके जीवन में आ सकता है, ये चीज़ पूरा पूरा विश्वास करने लायक नहीं थी। लेकिन महाप्रभु ने एक एक करके सारी लीलाएं प्रकट करना शुरू किया। तो गया से आए, गया से आने के बाद सभी भक्तों को बोला कि आज मैं आप सबसे एक बहुत ही प्राइवेट मीटिंग में मिलना चाहता हूँ, और शुक्लंबर ब्रह्मचारी के यहाँ उस चीज़ को मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और सारे यंत्रक पार्षदों ने महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु ने बुलाया तीन चार अपने यंत्रक पार्षदों को वहाँ पे, और उन्होंने अपने भगवान की विरह के विषय में काफ़ी विस्तार से बताया। और फिर करते करते महाप्रभु इतने सारे एक्सटेस्टिक सिम्टम्स प्रेजेंट करने लगे कि लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो गया इसके शरीर में, इसके वात की समस्या हो गई है इसको, या कैसे लौट के आया, किसी ने कुछ खिला दिया रस्ते में, या कुछ हो गया क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और श्रीवास ठाकुर जो उनसे हमेशा मिला करते थे तो वही कहा करते थे कि मैं तो आपसे यही, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार का तुम तर्क करते हो, तर्क को छोड़ के, शुष्क ज्ञान को छोड़ के, तुम कृष्ण प्रेम के जो रस है उसमें पूरी तरह से आप लाभित हो जाओ, डूब जाओ, यही मेरी प्रार्थना रहेगी हमेशा। और जब महाप्रभु के इस स्वरूप को देखा श्रीवास ठाकुर ने तो बोला हाँ लगता है मेरी प्रार्थना सफल हुई, तुमको वही रोग लग गया जो मैं चाहता था, ये रोग लगना चाहिए। और संकीर्तन पास्टाइम्स, महाप्रभु ने अपना पूरा का पूरा संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, कहाँ से? श्रीवासागन से। श्रीवासागन से संकीर्तन पास्टाइम शुरू हुआ। बीच बीच में ऐसी कई लीलाएं आती हैं जहाँ महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य भी प्रकट किया, हाँ, स्वयं नारायण शालिग्राम शिलाओं को हटाया, उठा करके कई बार खुद ही जाके बैठ जाते थे जो भगवान की पूजा की वेदी होती थी उस पे, शिलाओं को अपने गोद में रख लिया और बोलता था स्तुति करो, गाओ मेरे बारे में, कुछ कहो मेरे बारे में, इस तरह से गुणगान करते थे भक्त उनके बारे में। और मुरारी गुप्ता के यहाँ गए, वहाँ पे वराह रूप प्रकट किया और बताया कि आदि यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ और मेरे को सारी यज्ञ क्या होती हैं स्वीकार होती है दी जाती हैं। ऐसे करके भगवान ने अपना बड़ा ऐश्वर्य प्रकट किया और पूरी पूरी संकीर्तन पास टाइम शुरू किए। लेकिन कहीं ना कहीं महाप्रभु को बहुत ज़्यादा दुख था एक बात का, या क्या दुख तो नहीं, विरह कहना चाहिए। क्या था वो? ये था कि सारे भक्त तो हैं, अभी सारा लीलाएं यहाँ चल रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति की कमी है खाली यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? मिलिला सकल भक्त भाई नित्यानंद, भाई ना देखिया बड़ दुखी गौरा चंद्र। बड़े दुखी थे गौरा चंद्र कि सब तो हैं यहाँ पे लेकिन जो द्वापर के बलराम कृष्ण वो नहीं है यहाँ पे, उनका होना बड़ा आवश्यक है तब लीला पूरी होगी, है ना, उसके बिना लीला पूरी नहीं हो सकती। निरंतर नित्यानंद स्मरे विश्वम्भर, जानी लेना नित्यानंद अनंत ईश्वर। तो ये जो विरह है ऐसा नहीं था कि खाली महाप्रभु इस चीज को महसूस कर रहे थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी अनंत के अवतार है, स्वयं बलराम है, तो वो भी इस चीज को महसूस कर पा रहे थे कि श्री गौरचंद्र मेरे विरह में बहुत कमी महसूस कर रहे हैं मेरी, तो मुझे अब बढ़ना चाहिए आगे। प्रसंगे सुना नित्यानंद राख्यान सूत्र रूपे, जन्म कर्म के छू कही तन, इस तरह से बताते हैं। फिर इसमें आगे आके डिस्क्राइब करते हैं नित्यानंद प्रभु का जो शॉर्ट बायोग्राफी है, क्योंकि अगर देखें वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को जितना गुणगान करते हैं चैतन्य भागवत में, उससे बराबर या तो उससे कम तो नहीं, कम से कम ग्लोरिफिकेशन करते हैं नित्यानंद प्रभु का। ऐसे हर अध्याय कहीं ना कहीं किसी ना किसी खंड में ऐसे अध्याय मिलेंगे जहां वो नित्यानंद प्रभु का कहीं ना कहीं किसी बात पे गुणगान कर रहे हैं। तो ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं कि नित्यानंद प्रभु का क्या इतिहास था, एक चक्रधाम में प्रकट हुए, हड़ाई पंडित के घर, पद्मावती माता के गर्भ से, और क्या क्या लीलाएं कि उन्होंने क्या क्या चीजें सब बता चुके हैं। लेकिन पुनः मौका देख करके फिर एक बार थोड़ा ले लिया कि चलो एक बार और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे कई प्यार हैं जिसमें कि वो महा नित्यानंद प्रभु के बचपन के पास टाइम्स के बारे में बताते हैं। और कैसे बताते हैं कि बताते करते करते क्या होता है, नित्यानंद प्रभु को लेने के सन्यासी आते हैं एक दिन, और सन्यासी आते हैं, सन्यासी की बड़ी सेवा करते हैं हड़ाई पंडित, और हड़ाई पंडित की इतनी सेवा से प्रसन्न होकर सन्यासी काफ़ी समय वहाँ रहते हैं। और उसके बाद रहने के बाद जब जाने लगते हैं तो ऑब्वियस है किसी सन्यासी जब आते हैं तो उनको कुछ गिफ्ट ऑफर करते हैं जाते समय। तो हड़ाई पंडित ने भी बोला कि आप मांगिए, कुछ मांगिए। तो पहले तो उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन बोला नहीं नहीं आप मांगिए इंसिस्ट करने पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अकेला सन्यासी हूँ, जगह जगह ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे एक असिस्टेंट की आवश्यकता है। अब असिस्टेंट कहाँ से आएगा, कौन आएगा? तो असिस्टेंट ये नित्यानंद को दे दो मुझे, नित्यानंद को। और ये मतलब सहन से परे कि नित्यानंद प्रभु को ले लिया उस सन्यासी ने। तो ये उसी प्रकार से पास टाइम था जैसे दशरथ महाराज से विश्वामित्र मांग के ले गए थे राम लक्ष्मण को, तो उसी प्रकार से बहुत विरह में हड़ाई पंडित काफ़ी समय तक विलाप करते रहे। और व्याख्यान ये भी आता है कि उन्होंने इस विलाप में विरह में शरीर भी त्याग दिया, इतना विरह भगवान से हड़ाई पंडित का। और नित्यानंद प्रभु बिल्कुल डिटैच, इनडिफरेंट, वो चले गए सन्यासी के साथ, जगह जगह जा रहे हैं, गया, मथुरा, काशी, प्रयाग, और जगह जगह पूरे तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। और करते करते अंतोगत्वा वृंदावन आ गए। वृंदावन आते ही अपने पूरे के पूरे प्रेम भाव को प्रकट किया, और वहाँ पे जो गोकुल की रच थी पूरा वहाँ लोटपोट करना, वहाँ पे दुग्ध का पान करना, और बड़े ही आनंद में अपने बचपन को याद कर रहे थे, अपने कह सकते हैं द्वापर के समय को याद कर रहे थे कि हम भी इसी धूल में बहुत लीलाएँ की हैं हमने। और करते 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 करीब बहुत समय उन्होंने गुजारा वहाँ पर। और फिर जब सही समय आया, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु इंतजार कर रहे थे, चाहने को नित्यानंद प्रभु भी संकीर्तन आंदोलन शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं शुरू किया। वो चाहते थे कि ये शुभ कार्य चेतन महाप्रभु जी के द्वारा हो, और चेतन महाप्रभु का वेट कर रहे थे वो। तो चेतन महाप्रभु अपना अब सही समय आया, इस आंदोलन को शुरू किए। तो उस समय फिर नित्यानंद प्रभु ने जब एहसास हुआ कि अब समय आ गया है, अब मुझे भी उस पास टाइम में चलना चाहिए। तो क्या होता है आगे, जब इस प्रकार से चल रही थी तो करते करते उनको एहसास होता है नित्यानंद प्रभु को कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो प्रकट हुए हैं नदिया में, नवदीप में, और वहाँ चलना चाहिए। तो गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलने वो नदिया की ओर आगे बढ़े। जब नदिया पहुँचे तो यही सेम जो एक स्थान है, अगर आप जाएंगे मायापुर मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ता है नंदन आचार्य जी का भवन, उस स्थान पर नित्यानंद प्रभु छुप के रह रहे थे, किसी को पता नहीं था। लेकिन महाप्रभु जानते हैं परमात्मा रूप में, सारी उनको इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनको इस बारे में पता था कि नंदन आचार्य के यहाँ पे वो हैं। लेकिन तब भी लीला मात्र से उन्होंने सारे भक्तों को बुलाया, श्रीवास ठाकुर को बुलाया, हरदास ठाकुर को बुलाया, और बताया कल रात में मैंने स्वप्न देखा है, बड़ा ही अनोखा स्वप्न है। वो क्या देखा स्वप्न में कि एक बहुत बड़ा सा रथ है, रथ के ऊपर तालध्वज है, हाँ तालध्वज लगा हुआ है, और एक बहुत ही मजबूत शरीर का एक व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है रथ के पीछे, और मेरे घर के जो पड़ोसी हैं उनके घर के सामने खड़ा होकर के, वैसे तो मेरे घर के सामने खड़े हैं रथ उनका, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर के आगे वैसे चिल्ला चिल्ला के कम से कम 10 से 20 बार बोल रहे हैं, निमाई पंडित का घर क्या यही है, निमाई पंडित का घर क्या यही है, निमाई पंडित का घर क्या यही है, ऐसे 10 से 20 बार एक ही बात को बोल रहे हैं बारम्बार। और हाथ में उनके एक बड़ी सी रॉड है, इसको वो कैरी किए हुए हैं, और जो उनका धोती है पूरा का पूरा ब्लू रंग का है। तो साक्षात स्वप्न मुझे लग रहा है कि बलराम जी प्रकट हुए हैं हमारे नदिया में कहीं ना कहीं। और ये स्वप्न जो मुझे आया है वो स्वप्न ऐसा नहीं है कि कोई सत्यता नहीं इसके पीछे, नहीं, इसके पीछे मुझे लगता है कोई सत्यता है, कोई ऐसा महान पुरुष यहाँ पे प्रवेश किया है नदिया में जो कि हमें मिलना चाहिए, जाके उनसे हमें संग लेना चाहिए। तो ठीक है, शिवास ठाकुर, हरदास ठाकुर, सब लोग पूरे नदिया में घूमना शुरू करते हैं, जगह जगह ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन अब भगवान सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अभुनम च, देने वाला ज्ञान भगवान ही है और भुलाने वाले भगवान ही है। जितना कोशिश कर लें भगवान मिले नहीं, नित्यानंद प्रभु मिले नहीं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं। नंदन आचार्य जी घर ऐसे बहुत दूर नहीं है, आराम से वहाँ मिल सकते थे, लेकिन ढूंढ रहे हैं कहीं नहीं मिले उनको। और फाइनली महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु ने बताया ठीक है मैं लेके चलता हूँ कहाँ पे उस स्थान। वो स्थान था नंदनाचार्य जी का भवन, नंदनाचार्य भवन, वहां पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो वहां की लीला अपने आप में बहुत ही रोचक है। वहां पर जाकर क्या होता है, जब नित्यानंद प्रभु वहां पर बैठे हुए हैं, तो जब चेतन महाप्रभु पहुंचे तो आंगन में प्रवेश किया। उस आंगन में जब गए तो देखा एक बड़े से आसन पे नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, और वहां पर बैठ करके वो बस देख रहे हैं, मतलब एक कैसे ना टकटकी बांध के बस देख रहे हैं हो क्या रहा है। एकदम जैसे कि व्यक्ति मोशनलेस होता है, वो वैसे मोशनलेस वाली स्थिति है पूरी की पूरी, ना हिलना ना डुलना। सारे भक्त वहां प्रवेश किए, महाप्रभु प्रवेश किए, सब लोग वहां प्रवेश किए और देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु उनको देख रहे हैं, महाप्रभु को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अभी आगे क्या होगा ये भी नहीं पता है, एंटिसिपेशन की शांति छाई हुई है, एक दूसरे को देख रहे हैं। और मतलब उसका वर्णन जब इसमें चेतन भागवत में बताते हैं तो कह रहे हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सुंदर स्वरूप का कहते हैं जीवा से चाट रहे हैं, आंखों से पी रहे हैं, और इस प्रकार से बड़ा गहरा वर्णन किया हुआ, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं बस। लेकिन वो दोनों तो आपस में भावनाओं का आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन जो बाहर जितने और भक्तगण हैं उनको नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब पूरा पिक्चर स्टिल क्यों हो गया है, मोशन स्टिल क्यों है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, अभी आगे बढ़ना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ सब कुछ शांति छाया हुआ है। करते 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 महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला, बोला कि आप क्या करो, एक श्लोक पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, फिर देखो क्या होता है श्लोक पढ़ने से। तो उन्होंने दशम स्कंद का एक श्लोक पढ़ा जो भगवान के स्वरूप का वर्णन करता है। ये बड़ा ही फेमस श्लोक है, इस श्लोक ने बहुतों का जीवन बदला है। सुखदेव गोस्वामी जो एकदम कहते हैं एकदम दृढ़ कठोर ब्रह्मवादी थे, वो तक भक्त बन गए इस श्लोक को सुनने मात्र से। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण कर्णिकारम विभ्रद्वाशा कनक कपीशम वैजंती चमालम रंदयान वेणु अधर सुदया पुरन गोप वृंदेर वृंदा अरण्यम स्वपाद रमणम प्रवीशत गीत कीर्ति। ये सुंदर वर्णन आता है भगवान के सुंदर स्वरूप शरीर का, दिव्य शरीर का। बरहा पीड़म नटवर वपु, हाँ बरहा पीड़म भगवान के सर पे मोरपंख, नटवर वपु भगवान का जो पूरे के शरीर की डिजाइन है फॉर्म है, नटवर एक नटवर नृत्य करने वाले नटराज भगवान, कर्ण और कर्णिकारम एक विशेष प्रकार का फूल होता है कर्णिका, ब्लू रंग का फूल होता है, ब्लू रंग करेल पीला प्रोजी बता रहे हैं, तो उस प्रकार का फूल भगवान के कानों में, कर्ण और कर्णिकारम विभ्रत वाशक कनक कपीशम, उनके जो वस्त्र हैं भगवान के वो किस प्रकार से हैं, जैसे कि एकदम पीला, जैसे कांति का सोना होता है सूर्य के समान, उस प्रकार से भगवान की पीताम्बरी है। कनक कपीशम वैजंती चमालम, जो पांच या छह प्रकार के फूलों से जो वैजंती माला भगवान की बनती है वो भगवान ने डाल रखी है। रंदयान वेणु अधर सुदया पुरयन, वृंदरान जो बांसुरी है, बांसुरी के जो होल्स हैं उसको भगवान के अधर का सुधा का, अधर के सुधा का पान हो रहा है। सारे गोप वृंदर, सारे के सारे गोप भक्तों के साथ, गोप वृंद सारे के सारे ग्वाल बालों के साथ भगवान वृंदा अरण्यम सपाद रमणम प्रविषाद गीत कीर्ति, प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में गोचरण करने के बाद। ये श्लोक, ये श्लोक ने मतलब आपको बताया, ये श्लोकों ने, श्लोक ने बड़े बड़े लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई, जब तक सारा माहौल में शांति छाया हुआ था वो शांति अब क्या होने वाली है, अशांति, अब होगा असली धमाका। शुनि मात्र नित्यानंद श्लोक उच्चारण पड़ी लमूर्चित होना नाही का चेतन। नित्यानंद प्रभु सुनते ही गिर पड़े नीचे, अचेतना, चेतना ही खो गए, ऐसा श्लोक है। सोचिए क्या श्लोक की शक्ति है। पढ़ी लमूर्चित होना नाही का चेतन, चेतना खो गए, पूरा पूरा जमीन पे गिर गए, चेतना खत्म हो गई। अरे क्या हो रहा है, श्लोक शुनि कट क्षण हिला चेतन तबे प्रभु लागी लेना करिते क्रंदन। इसी वर्स को बारंबार कहते हैं हंड्रेड ऑफ टाइम्स अगेन एंड अगेन सुन रहे हैं उसको, और सुनने के बाद चेतना वापस आई तो रोना शुरू। अभी देखिए शांति के बाद क्या क्या हो रहा है ना, अभी चेतना गई रोना शुरू, उसके बाद पुनः पुनः श्लोक सुनी बड़ा या उन्माद ब्रह्मांड भेदे है न सुनी सिंहनाद। इतना पागलपन चढ़ गया नित्यानंद प्रभु को, बताते हैं श्लोक को सुन सुन के एकदम शेर की तरह गर्जना शुरू उन्होंने कर दी, और जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो इतनी जोर की गर्जना है जिस प्रकार से नरसिंह देव ने जब गर्जना की थी उतर के नीचे, जब पितृदेव उनके जो भगवान जब उतरे थे अवतरण लिए थे संसार में खंभे को फाड़ करके, जो उसके बाद जो गर्जना की थी तो तीनों लोग कांप उठे थे उनकी गर्जना सुन के। उस प्रकार की गर्जना नित्यानंद प्रभु ने जब की तो पूरा माहौल दम कांप चुका था। अब क्या होने वाला है, अभी क्या देखिए अभी क्या होता। अलक्षित अंतरिक्ष पड़ाय आछाद सब मन भावे की व चूर्ण है लेहाड। क्या हुआ, तुरंत हवा में कूद गए, सडनली जम्प्ड इन द एयर और बहुत जोर से जमीन पे गिरे। और क्या हुआ, ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा ना शरीर का जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी हैं। अन्य की दया वैष्णवेर लागे भय रक्ष कृष्ण सब स्मरण सनरय। कह रहे हैं कि सब चिल्लाने लगे, हे कृष्ण कृपया करके इनको बचाओ बचाओ, पता नहीं क्या हो गया इस श्लोक से, बचाओ बचाओ। गरा गाड़ी आये प्रभु पृथ्वी र तले कलेवर पूर्ण हैले नयन र जले। पूरा गाड़ा गाड़ी जमीन पे पूरा का पूरा लोटपोट करना शुरू किया चित्र नित्यानंद प्रभु ने। और पूरा का पूरा उसको करने के बाद उनकी आंखों से अश्रु धाराएं निकली जा रही हैं। हाँ, विश्वम्बर मुख चाही छड़े घन श्वास अंतरे आनंद क्षणे क्षणे महाहास। और महाप्रभु को देखकर क्या हो रहा है, बहुत खुशी से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। क्षणे नित्य क्षणे नाट क्षणे बाहुताल क्षणे योदा योदा लंभ दई देखी भल। और अगले पल में नित्य, फिर झुक के प्रणाम करना, हाथ पकड़ लेना, उसके बाद फिर कूदना, फिर इतनी एक्सटेसी ये एक्सटेसी है भक्तों के बीच की एक्सटेसी है, इसको नकल नहीं मार सकते। इसको नकल मारने की कोशिश करेंगे तो पहले तो हाथ पैर भी टूटेगा और बहुत दिक्कतें भी आएंगी, बाकी लोग भी मारना शुरू करेंगे क्योंकि ये लीला हम जानते हैं हरिदास ठाकुर के साथ, जब हरिदास ठाकुर की लीला में आता है ये चीज़ कि हरिदास ठाकुर जब ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट शुरू किए थे तो वहीं पर एक स्मारता ब्राह्मण करा था, तो वो भी देखा अच्छा कि नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जब ये एक्सटेटिक सिम्टम्स प्रेजेंट करने लगे तो करते करते देखे कि सारे के सारे लोग गाँव के उनके पास इकट्ठे हो गए। उनकी इस प्रेमानुवाद अवस्था को देख करके वो क्या कर रहे हैं, उनके चरणों में वो फूल चढ़ाना शुरू किया, प्रणाम करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें वो शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये देख के स्मारता ब्राह्मण खड़ा था, उसने बड़ा अच्छा तरीका ये तो कि जब हम खुशी कूद कूद के नाचेंगे, आंखों से अश्रु धारा निकालेंगे, जमीन पर लोटपोट करेंगे तो इतना सम्मान प्राप्त होगा हमें। तो उसको समझ में तो आया नहीं कि ये सम्मान ऐसे नहीं प्राप्त होता है, इसके पीछे बहुत ही डीप इमोशंस हैं, बहुत ही गहरा भावना है भगवान के प्रति, प्रेम है भगवान के प्रति, ये चीज़ नहीं पता थी। इसलिए कई बार कहते हैं कि जब बाह्य रूप से किसी इमोशंस को नकल मारने की कोशिश करते हैं तो हम हास्य के पात्र बन जाते हैं। हास्य के पात्र मतलब लोगों के लिए मखौल हो जाता है कि हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति उन भावनाओं को या उस क्रियाओं को प्रस्तुत कर रहा है किन भावनाओं से, हम भावनाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए भावना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या भावना थी। तो नकल मारना शुरू किया अगले दिन, वो आगे वो भी आया, वो ऐसे भाई वस्त्र डाल के और एकदम कृष्ण का नाम सुनते हुए गिर पड़ा, धड़ाधड़ लोटपोट करना शुरू किया। आपस के लोगों ने देख लिया भाई ड्रामा कर रहा है, उठा के चप्पल जूते जो थे सब मारना शुरू किया तड़ातड़। तो कहने का मतलब था कि भावनाएं नकल नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, नित्यानंद प्रभु की जो एक्सटेसी है ये हमें दिख सकती है, समझ सकते हैं इसको कि भक्ति के जब उन्नत अवस्था में, सबसे उन्नत अवस्था में जब होते हैं तो क्या लक्षण होते हैं, जब आपस में भक्त मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेम वी वला ये शब्द आ रहा है, प्रेम वी वला, ये उस समय प्रकट होता है कि जब दोनों ही उस उन्नत स्तर के भक्त होंगे तो। अन्यथा कई बार ये प्रेम वी वला बड़ा मुश्किल है प्रकट कर पाना, लेकिन ये नहीं कि नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है जैसे कह देते ना कि टू बी एंथुजियास्ट टू हैव एंथुजियाज्म बी एंथुजियास्टिक। कहने का मतलब अगर आपको एंथुजियाज्म चाहिए तो कम से कम बाह्य रूप से एंथुजियास्टिक होना शुरू करें। कोई नहीं, अगर प्रेम नहीं भी है तो प्रेम प्रकट करना शुरू करें। हाँ, सेवा के माध्यम से, अपने आदान प्रदान, अपने आचार विचार, इन प्रकार से माध्यमों से प्रेम को प्रकट करना चाहिए। प्रेम ना हो सके तो कम से कम स्नेह तो जरूर होना चाहिए भक्तों के प्रति, उतना भी ना हो तो कम से कम आदर जरूर होना चाहिए भक्तों के प्रति। और इस प्रकार से आगे बढ़ती है लीला और महाप्रभु फिर उनको अपने गोद में रख करके थोड़ा विश्राम कराते हैं और बड़ा मधुर आगे लीला आती है इसकी बढ़ती हुई। तो सम एंड सब्सटेंस आज के इस कथा से हम ये सीखने को मिलता है, इस पूरे के पूरे श्लोक और इस अध्याय से जानने को मिलता है हमें कि किस प्रकार से भक्तों के बीच में प्रेममय संबंध होना चाहिए और इस संबंध को विकसित करना, कल्टीवेट करना, ये हम सबका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। क्योंकि भक्ति आनंद है, आनंद कांड, उस आनंद कांड को प्राप्त करना है, उसी जन्म में प्राप्त करना है। तो इन सारे रिलेशनशिप्स को समझना और इसको जीवन में उतारना अति अनिवार्य है। तो यह भी विराम देते हैं, समय हो चुका है। किसी का एक दो प्रश्न या कोई टिप्पणी हो तो कह सकते हैं इस पर।
या उसके साथ किस प्रकार की भावना आपस में विकसित करे या बनाए रखे जीवन पर्यंत, उसके लिए क्या चीज है, क्या करना चाहिए?
मेरी जो उसमें समझ है गुरुजी, ये इस प्रकार से कि अब ये प्रेम भी वाला ऑब्वियस है कि हमें प्रेम तो प्रकट करना चाहिए। प्रेम कितने स्तर तक प्रकट करते हैं वो दोनों भक्तों की भक्ति की उन्नति पे भी निर्भर बहुत करता है। तो कम से कम प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, तो उसको प्रकट करने का एक बताते हैं रूप गोस्वामी भी, ददाती प्रतिगणाती गुह्यम आखाती पृच्छति भुंगते भोजते चैवा। तो इसमें अगर आप देखें गुह्यम आखाती पृच्छति, तो इवन महाप्रभु की कितनी लीलाओं में हम देखते हैं कि महाप्रभु का बहुत बड़ा जो समय है जीवन काल में वो गुह्यम आखाती पृच्छति है। अगर हम 48 साल का जीवन देखें श्री चैतन्य महाप्रभु का मैनिफेस्ट रूप में, प्राकट्य रूप में, तो उसमें से कम 24 वर्ष महाप्रभु संन्यास के बाद की लीलाएं, और उसमें भी अगर अंतिम का 18 वर्ष देखें तो जगन्नाथपुरी की लीलाएं सारी, उसमें कहीं बाहर नहीं गए, और उसके भी अंतिम 12 वर्ष देखें तो भी क्या है, भक्तों के बीच का आदान प्रदान है। तो एक साधारण भक्त जैसे आप कह रहे हैं कि हम आपसी डीलिंग में क्या चीज़ को रख सकते हैं, तो ज़रूर से हमारे बीच में ये रिलेशनशिप में होना चाहिए कि कम से कम गोहिम आखाती प्रचिति भगवान को केंद्र में रख के होना चाहिए, भगवान के विषय में होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए आपस में मिलें तो। समय भी बहुत मैटर करता है, दोनों के पास समय कितना है, अब आजकल इतना भागदौड़ है कि इतना समय भी नहीं होता है कि बैठ के गोहिम आखाती प्रचिति कर पाए, लेकिन हाँ अवश्य अगर ये समय निकालें यात्राओं वगैरह में, धाम में कभी गए, तीर्थ स्थान पे गए, तो जरूर समय निकाल के भागवत पर चर्चा, भागवतम के विषय में थोड़ी गुह्य चर्चाएँ आवश्यक हैं, और साथ ही साथ भुंगते भोजते चैव, भक्तों को बड़ा प्रिय है तो उसके लिए जरूर करना चाहिए भक्तों का प्रसाद सेवा और अन्य। तो ये थोड़ी मेरी समझ है।
भागवतम का दसम स्कंद पढ़ते हैं तो दसम स्कंद में कृष्ण बलराम जब गोचारण लीला में जब जंगल में विचरण करते हैं तो बलराम जी इतनी प्रशंसा करते हैं पेड़ों को दिखा करके कि देखिए कृष्ण ये वृक्ष आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप आपके शरीर के ऊपर छाया प्रदान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और कृष्ण भी सेम मतलब प्रशंसा बलराम जी की कर रहे हैं कि नहीं देखे देखे हलधारे वृक्ष आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके स्वागत में झुक रहे हैं, ये जो चिड़िया है आपका गुणगान कर रहा है, मतलब इस प्रकार की भावना। इससे यह झलकता है कि एक भक्त जब तक दूसरे भक्त के गुणावली का गान नहीं करेगा तब तक हम लोगों की जो प्रेम की जो भावना है वो कभी भी विकसित नहीं होगी।
सही बात है,
क्योंकि जहाँ के हैं हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहे, किस कारण से कि एकदम दूसरे के प्रति जो ओ भाव है ना गुणावली की, वो चीज गुण नहीं दिखता, हम लोगों को दोष रूप में ही सारा कुछ दिखाई देने लगता है जिससे प्रेम विकसित नहीं होता।
सही बात है, इसमें होना भी चाहिए कि हमें भक्तों को
भगवान अपने लीला में ये व्यवहार सिखा रहे हैं, किसको ये शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा तो दे रहे हैं मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को कि इस प्रकार के भाव से हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं।
जी जी भाई, धन्यवाद भाई। और किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न किसी का? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।